संतप्त मानस शांत हों, इनके गुणों के गान में अर्धमान महान दिन बितरे हमारे ज्ञान। समय सार का कलश 34वां चलेगा, पेज नंबर 101 समय सार में। तो इसमें है पेज नंबर 344-345। तो ख्याल नहीं है कि 8 प्रकार के लोग ऐसे थे जो आत्मा को नहीं जानते हैं और आत्मा से भिन्न जो पुद्गल के ही रूप है प्रकारांतर से, उनमें से किसी न किसी को आत्मा मान लेते हैं। और आठों का तर्क ये है कि हमें इसके अलावा कोई आत्मा दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इसी को आत्मा मानते हैं। कर्म के अलावा आत्मा दिखाई नहीं देता है तो हम कर्म को ही जीव मानते हैं। नो कर्म माने शरीर आदि, इनके अलावा हमें कोई जीव दिखाई नहीं देता है इसलिए हम इनको ही जीव मानते हैं। ये 8 प्रकार के जो तर्क थे उस सब का एक ही था कि हमें अलग से दिखाई नहीं देता है, हमारे अनुभव में नहीं आता है, इसलिए हम इसको मानते हैं। और जिस तर्क से उनने अपनी बात रखी थी उसी तर्क से आचार्य देव ने उनकी बात को काटी कि तुम कहते हो कि हमें दिखाई नहीं देता है तो तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं दिया तो तुम चाहे जिसको आत्मा मान लोगे। वो कहते हमें तो साफ आत्मा इससे भिन्न दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञानियों को वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर दिखाई देता है, इसलिए ये अनुभवाश्रित युक्ति हुई। और आगम में तो लिखा ही है कि इनसे भिन्न भगवान आत्मा है। तो इस तरह आगम और युक्ति से दोनों से उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये भगवान आत्मा इन वर्णादि से लेकर और वो सब अद्भुत गुणस्थान पर्यंत जितने भाव हैं उनको यहां 8 भागों में बांटा है, वे आत्मजीव नहीं है। ये सब बात कहने के बाद, तर्क युक्ति से सिद्ध करने के बाद आचार्य देव प्रेरणा देने के लिए ये बात कहते हैं कि बहुत बातें हो गई, अब बातों से कुछ नहीं होगा, अब तो काम करो। तो उसके लिए 34वां कलश है, पढ़ो।
विरम किम परे कार्य को लाहलेन, स्वयं निभतासन पश्य सन्मासमेकम्, हृदय सरसि पुंसा उद्गलाद्भिन्न धाम्नो, ननु किनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के भकवाद से, अब तोर को निज को लखो आध्यात्मिक अभ्यास से, यदि अनवरत छह मास हो निज आत्मा की साधना तो आत्मा की प्राप्ति हो, देह इसमें रंजना।
देखो इसके ऊपर जो एक पंक्ति है ना कलश 34 के ऊपर संस्कृत में, उसमें यही बात लिखी है जो कलश में है कि यही खलु उद्गल भिन्नात्मोपलब्धि। इस जगत में निश्चय से पुद्गल से भिन्न भगवान आत्मा की उपलब्धि के प्रति विप्रतिपन्ना विवाद में पड़ गए लोग, होगी कि नहीं होगी, होगी संशय में पड़ गए। सामनैव अनुशास्या, उनको बहुत प्रेम और शांति से अनुशासन में लाते हैं। ये कलश का एक तरीके से हेडिंग है। और वो यहां कहते हैं विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन, कहते हैं रुको, जब ऐसे कोई बहुत जैसे लोकसभा में बहस होती है ना आजकल, ऐसी बहस हो रही हो दो चारों तरफ से लोग चिल्लपों कर रहे हों और कोई एकदम बीच में आ जाए एकदम समर्थ आदमी और कहे एकदम रुको रुको बंद करो ये सब बात, तो सब भौचक्के होके उसकी तरफ देखने लगे। ऐसे ही आचार्य का एकदम आदि विरम रुक जाओ, ये लोट लकार है आज्ञावाची और विरमती का लोट लकार का मध्यम पुरुष के एक वचन का प्रयोग है। अब कैसे रूप चलेंगे आगे तुम समझ लो, है ना। वी उपसर्ग पूर्वक रम धातु है, रम माने रमना और विरम माने रमने से हटना, विराम लेना, कि जो तुम कर रहे हो ये बंद करो। कि क्या कर रहे हो, कि अकार्य कोलाहले ने, कि बिना मतलब का हल्ला गुल्ला कर रहे हो। कि क्या कर रहे थे हम, आचार्य महाराज कह रहे थे किससे कह रहे हैं, हम तो ये विचार कर रहे थे कि आत्मा क्या है, शरीर आत्मा है कि नहीं है, हम तो ये विचार कर रहे थे, हम तो आत्मा की खोज की चर्चा कर रहे थे। ये जो हमने पहली गाथा से लेकर और ये अपनी जो गाथा आई 44 तक, उनमें और उनकी टीका में और कलशों में जो हमने बात की, उन सब को वे यहां अकार्य कोलाहल कह रहे हैं। गुरुदेवश्री की भाषा में अर्थ करूं तो वो कहेंगे कि जहां निवोड़ी खाने को मना किया जाता हो तो जहर खाने के लिए तत्व चर्चा को, जहां अकारी का कोलाहल कहा जा रहा हो तो फिर दुनियादारी की जो और विकथाएं हैं उनको धर्म कौन कहेगा, फिर धर्म चर्चा कौन कहेगा। कहने साहब वो उन्हीं से कुछ बात कर रहे होंगे, लेकिन ये तो बात इस प्रकरण में कह रहे हैं ना। ये अकार्य कोलाहल क्या है जो चर्चा वे स्वयं कर रहे थे, तो उसी को वे अकार्य कोलाहल कह रहे हैं। गजब की बात तो ये है, जैसे कोई आदमी आपको एक घंटे तक समझाए और आप अपनी बात पे जिद पे ही अड़े रहे हैं, बिल्कुल समझने को तैयार नहीं हो, तो वो ही अथवा कोई दूसरा आचार्य आगे कहे काय करो दिमाग खराब कर रहे हो, सरहद जाने दो, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें दुख है सुख करो। इन बेकार की बातों में हमारा समय नहीं है, तुम्हें समझना हो शांति से तो समझो। ये विरम शब्द में और अकार्य कोलाहले ने इस शब्द में इतनी बात भरी है, बिना मतलब का हल्ला गुल्ला है ना। या अपने इसमें अनुवाद किया, हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। व्यवहार मेरे को तो राजमल जी ने तो बकवादी कहा है, यही शब्द पड़ा है मूल में उनकी पंचाध्यायी में। देखो अब तो रुको, निज को लखो। कि कैसे लखें निज को, कि अध्यात्म के अभ्यास से। विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहले ने स्वयंपि निभृता सन पश्च षण्मासमेकम्। स्वयं निवृत्त होकर अपने आप तुम इस कोलाहल से निवृत्त हो जाओ, दुनियादारी से निवृत्त होकर षण मास मेकम पश्य, एक छह महीना तक भगवान आत्मा को देखो बस, और कुछ नहीं, बस एक ही काम है मेरे का। श्रीमद के शब्दों में काम एक आत्मार्थ नो बीजो नहीं मन रोग, तो कोई अपने माथे पर बुझा नहीं देना, एक हमें आत्मा जानना है। एक सारे जगत से दृष्टि को हटाकर एक छह महीने तक तुम इस आत्मा को जानने का प्रयास तो करो। देखा ना, प्रस्य शरण मास मेकम, एकम माने आत्मा को, एक माने अध्यात्म माने आत्मा होता है। आपको कैसे होगा, एक माने तो एक होता है ना, कि जो रूमाल एक है ऐसा एक होता है। एक रामधारी सिंह हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, डॉक्टर रामधारी सिंह, नाम क्या बोला मैंने, नामवर सिंह, रामधारी दिनकर की बात नहीं कर रहा हूं, वो अपभ्रंश के बहुत बड़े विद्वान हैं, नामवर सिंह छत्री हैं। वो कहते हैं कि जैन अध्यात्म में कहीं एक शब्द लिखा हो तो उसका आंख मीच के आत्मा अर्थ कर देना। और अब तो तुमने नए चक्र के विशेषज्ञ हो गए लोग, इसमें आता ना एक और अनेक, ये आत्मा में दिव्य क्षेत्र काल और भाव होता है ना, तो भाव की अपेक्षा आत्मा एक और अनेक है, गुणों की अपेक्षा। तो वहां भी अनंत गुणों का अखंड पिंड, उसको ही एक कहते हैं ना, वो आत्मा ही की बात है ना। एकम छह महीना लगातार और संकल्प के विकल्पों को छोड़कर तुम अपने भगवान आत्मा को देखो। अभी ये आठ प्रकार के जो अज्ञानी की मान्यता बताई ना, और उनका खंडन किया खुद नहीं, अब वे खुद ही कहते हैं, कहीं ये खंडन मंडन में क्या रखा है, छोड़ो इस बात को। अब कहते हृदय सरसी उद्गलात भिन्न धामनो, कि तेरे हृदय रूपी तालाब में पुद्गल से भिन्न तेरा भगवान आत्मा स्वयं विराजमान है, कि तू उसे देख, कि मैं देखूंगा तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कि क्या बात कर रहा है, क्यों नहीं होगी, जब आत्मा यहां है और तू उसे देखने की कोशिश करेगा तो वो दिखाई क्यों नहीं देगा, अवश्य ही दिखाई देगा। देखा नहीं, यदि अनवरत छह मास हो निज आत्मा की साधना तो आत्मा की प्राप्ति हो, संदेह इसमें रंजना। ये हूबहू उस छंद का पद्यानुवाद है हिंदी में, बिल्कुल सरल सुबोध भाषा में। बनारसी दास जी ने और एकदम हृदय में बात बैठ जाए इस तरकीब से इस तथ्य को प्रस्तुत किया है। वो भावानुवाद है, ये छंदानुवाद है, भाषानुवाद है, मतलब समझे ना। पढ़ो, बहुत अच्छा है, पढ़ो बनारसी दास का।
भैया जगवासी तू दास हुई के जगते सो, एक छ महीना उपदेश मेरो मानुरे, और संकल्प विकल्प के बेकार तज, बैठी के एकंत मन एक ठौरो आनुरे, तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर हुई सो वासु पहचानुरे, प्रापति ना हुए कछु सो तो विचारत, सहे हुए प्रापति स्वरूप यो ही जानुरे।
कितना मृदु कोमल संबोधन है कि भैया जगवासी, हे जगत के जीवो, ये जो अपने हिंदी का बहुत मृदु संबोधन है, जिसकी बंबई में जाके दुर्दशा हो गई है, भैया भैया जी, गुजरात का भाई है ना, हे भाई, हिंदी का वो भैया है, बोलते ना सब जगह, जो हिंदी एरिया से आते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं भैया भैया भैया, बहुत प्रेम से। और वहां जाते हैं बंबई में तो बेचारे जितने भी वो गए ना हिंदी भाषी, जो आपस में भैया भैया करके बोलते थे, वो उनको बेचारों को मजदूरी करनी पड़ी वहां जाकर, زیادہ تر ٹیکسیاں چلانے لگ گئے بھی لوگ, اور کام کرنے لگ گئے, سبزی بیچنے لگ گئے. تو پھر بھیا بھیا بولتے نا آپس میں, تو انہوں نے یو پی اور بہار کے لوگوں کو بھیا کے نام سے سمبودھت کرنا شروع کر دیا, اور بھیا لوگوں کے ورودھ آندولن. کیا ہاں, اب وہ بمبئی میں جو ہو گیا, لیکن ان میں بھی ایسا نہیں, بہت پریم ایکا ہے. وہ سبزی والا بیٹھا ہو نا, اور اپن جائیں اور اپنے کی جو اپنی اس پہ آ جائیں, اپنی اس پہ آ جائیں, مانے اپن اپنی لوک کی بھاشا میں بولنے لگ جائیں. تو ایک دفعہ کہتے ہیں بھیا کیا بات, یہ وہاں بتا رہے بھیا, تم بھیا ہو, اور پھر تو دیکھو پھر تم اس کے پرماننٹ گراہک بن جاتے ہو, اور وہ تمہیں بڑھیا سے بڑھیا چیز دیتا ہے, سستی سے سستی چیز دے سکتا ہے, تمہیں بھاؤ دیتا ہے. ان میں ایسا ہے. تو مراٹھی کو دیکھے ہیں نا, ہمارے مدھیہ پردیش میں بہت مراٹھی, 40% ایجوکیشن میں مراٹھی لوگ ہیں, سنت جی آپ کو معلوم, اور ان کو ہم سب لوگ کڑی چچ بولتے تھے. ان کے جو گرامین بھاشا کے جو میٹھے شبد ہوتے ہیں, اور جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں نا, تو ان کا بہت باتسل بھاو اس میں جھلکتا ہے. تو بنارسی داس جی نے بھی اسی شبد کا پریوگ کیا ہے کہ ہے جگواسی, ہے بھائی بھیا, تمہیں بنی جی بہت بھیا بھیا بولتے تھے, ان کے پرچنوں میں سینکڑوں دفعہ بھیا شبد آتا تھا, سمجھے نا. اداسی ہوئے کے جگت سو, اوپر اس میں کلش میں اپن نے دیکھا تھا نا, کیا تھا نبھتاسن, اس کا ارتھ کیا ہے, نربتی لے کر ہے نا, اداسی ہوئے کے جگت سو ایک چھ مہینہ اپدیش میرو مان لے, ایک چھ مہینہ کے لیے میری بات مان لے, کہ ٹھیک ہے ہم ماننے کو تیار ہیں. بولو کیا کرنا, اب بولو, ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں. مانو وہ بالکل تیار ہو گیا ہے تو وہ آگے بتاتے ہیں کہ اور سنکلپ وکلپ کے بچار وکار تج, اب تم زیادہ سنکلپ وکلپ میں مت پڑ. جیسے شاستری بھاشا میں تو پر میں ایکتو مت کرتے تو بھوکتے تو بدھی کو سنکلپ کہتے ہیں, اور گیہوں کے لکش سے گیان میں اٹھنے والی وکلپوں کی ترنگوں کو وکلپ کہتے ہیں. لیکن لوک میں کہتے ہیں نا, اس کے پرنام تو سنکلپ وکلپ بھر گئے, ایک دم گھبرا ہو گئے, تو دنیا کے اور سنکلپ وکلپ چھوڑ کر کے بیٹھ کے ایکانت میں بیٹھ کر اپنے من کو ایک ٹھور آن لے, ایک جگہ لگا دے. اب ایک جگہ لگا دے میں نے کہا, کہیں ایک جگہ لگا دے, دیوار پہ لگا دے, اس پہ لگا دے, اس پہ لگا دے, ارندھ بھگوان کی مورتی پہ لگا دے. کیوں, ایک ٹھور مانے, ابھی بتایا تھا نا کہ کہیں ادھیاتم میں ایک آوے تو اس کا ارتھ ہے آنکھ میچ کے آتما کرنا, مانے ایک ٹھور مانے آتما کی طرف لیا. اب یہ النکار ہے کہ تیرو گھٹ سر, مول میں یہ ہردے سرسیا ہے نا, کہ تیرا گھٹ گھٹ مانے, اس شریر کو بھی گھٹ بولتے ہیں نا, تو تیرا یہ شریر ہے, یہ تو ہوا تالاب, تامے تو ہی ہے کمل, اور اس میں کھلا ہوا کمل تو ہے. یہ شریر ہے تالاب, اس شریر میں یہ بھگوان آتما, اس میں کھلا ہوا کمل ہے, تو کمل ہے. اب تو ہی مدھوکر, بھونرا بھی تم ہے, تو میں دو کون ہو گیا, کمل بھی میں اور بھونرا بھی میں, کہ وہ ترکالی جو بھگوان آتما ہے وہ تو ہے کمل, اور تیری جو جان کی پریائے ہے وہ ہے بھونرا. تو ہی کیا, تیرو گھٹ سر تامے تو ہی ہے کمل, ताको तू ही मधुकर सुभाष पहचान ले, उस कमल की सुभाष को जैसे वो भौरा पहचान लेता है ना, ऐसे ही अपने भगवान आत्मा रूपी कमल की सुभाष को तू अपने उपयोग रूपी भौरे से कह के वो पहचान ले। वैसे क्या होता है, जब वो भौरा उस कमल की गंध को अच्छी तरह पहचान लेता है और वो उसे बहुत आनंददायक लगती है, तो मालूम वो अपना सब कुछ भूलकर उस कमल के फूल पर बैठ जाता है और उसके गंध लेता है, मस्त रहता है और सारे विकल्प छोड़कर। अब शास्त्र में ऐसा आता है, वो राजा भोज के बारे में आता है, तो वहां पर उनका एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है कि वो भौरा आया कमल पे बैठा था, तो कमल शाम को सूरज अस्त होता है तो धीरे 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 बंद हो जाता है, तो सुबह सूरज उगता है तो फिर खुलता है। वो कमल का फूल ऐसा नहीं कि एक दिन में मुरझा जाए, कई दिन तक रहता है और रोजाना बंद होता है रात को और दिन को खुल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कमल। और एक होता है कुमुद, नाम सुना, कुमुद क्या होता है कि दिन को बंद हो जाता है और आज जब चांदनी रात होती है ना और चंद्रमा उगता है तो वो खुलता है। जो रात्रि में खिले वे हैं कुमुद, कमल के ही एक भेद है, और दिन में खिले वे हैं कमल। अब वो भौरा उस कमल पे बैठ गया, अब वो कमल बंद हो गया, अब उसमें बंद हो गया वो अंदर। वो कहते हैं कि भौरे में इतनी ताकत होती है कि लकड़ी की ऐसी इतनी मोटी दीवार हो ना, तो इस तरफ से वो निकल के छेद करके उस तरफ से निकल जाएगा, वो ऐसा आरा सा चलता है उसको कि एकदम बराबर लकड़ी करते 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 छेद हो जाता पूरा। इतनी मोटी दीवार को छेद करके निकल सकता है, और कमल की पांखुड़ी कितनी मुलायम कितनी कमजोर है, लेकिन वो उसमें से नहीं निकल सकता, वो उसको काट के वो कहीं से भी निकल के भाग सकता है, लेकिन वो तो उसकी चीज हो गई ना, उसका तो उसमें अपनापन हो गया ना, वो उसको कैसे काट दे। तो उसमें ऐसा छंद आता है, ऐसा नींद शतक में आता है कि वो सोचता है कि सुबह होगा सूरज उगेगा फिर कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा, ऐसा बहुत बढ़िया श्लोक है, मैं भूल रहा हूं श्लोक, किसी को याद हो तो वो सुनाए बढ़िया। क्या प्रातः भविष्यति है, क्या है याद, क्या हाँ बोलो बोलो है पूरा याद, रात्रि गमस्यति भविष्यति सुप्रभाता, ऐसा छंद है कि रात्रि बीत जाएगी सुबह होगा कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा, क्यों बंद हो गए ना, पहले दिन में नहीं उड़ रहा था, हो सकता है सुबह जब कमल खिल जाए तो फिर मैं उड़ जाए, क्या शाम को जब बंद होने लगेगा तब उड़ जाऊंगा। उसने ऐसा लिखा कि बंद होने लगता है ना तो अभी उड़ जाता हूं, अभी तो इतना बड़ा छेद है, अभी उड़ जाता हूं, अभी तो इतना है, मैं तो इतने से निकल जाऊंगा, अभी उड़ जाता हूं, ऐसे करते करते मैं वो कमल बन गया। फिर आता है कि वो गजनी हस्तनी आई और उसने ऐसा लिया और उस कमल को खा गई है ना, कि गजनी उज्जहार है, आता क्या नहीं आता है, वो कमली कमल को खा जाती है। तो वो घोड़ा जिस पे इतना रीझ जाता है कि मौत की कीमत पर भी वो उसको नहीं छोड़ता है, तो तुम अपना 43 भगवान आत्मा पर ऐसे रीझ जाओ कि सारी जगत की कोई चीज तुम्हें वहां से हटने के लिए आकर्षित ना कर सके, बाध्य ना कर सके। ऐसी बात देखा ना, तीरो घट सरता में तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर हुई सुवास पहचान ले, और प्राप्ति ना हुई है कछु ऐसो तू विचारते है, या ननु कमनो उपलब्धि, तुझे शंका हो रही है कि नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कहते प्राप्ति ना हुई है कछु, ऐसो तू विचारत है, तू सोचता है कि नहीं मिला तो। अब इस तेरे तो का हम क्या जवाब दें। सही हुई है प्राप्ति, स्वरूप यों ही जान ले। अरे अवश्य होगी प्राप्ति, ये बात बिल्कुल सही है। काय की गारंटी नहीं हुई तो क्यों? तुम हमें बता रहे हो और हम सब धंधा पानी बंद करके, दुकानदारी बंद करके, नौकरी से छुट्टी लेकर क्यों हम 6 महीना बैठे जाते हैं, और तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। लेकिन अब गारंटी तुम्हारी है ना कि वो हमें प्राप्ति फिर अवश्य होगी कि हाँ हमारी गारंटी है। और नहीं हुई तो तुम्हें क्या करता है, तो हमारी जान ले लेना और क्या करेगा, क्या करेंगे तुम। नहीं हुई तो कहके हमसे क्या कहलाना चाहता है, ऐसे हमें धमकी देता है कि हमने ऐसा किया और भगवान आत्मा की उपलब्धि हमें नहीं हुई तो क्या, कि तू तो कह के क्या कहना चाहता है। मेरी सारी संपत्ति ले लेना क्या कहलाना चाहता है, मेरी जान लेना चाहता है, मैं क्या कहूं तेरे को। अरे मैं कह रहा हूं कि अवश्य हुई है प्राप्ति, शर्त लगा लो। तो भैया हम शर्त नहीं लगाते, जुआ नहीं खेलते, हम बता रहे हैं ना कि अवश्य होगी प्राप्ति, कि गारंटी क्या है तुम तो हमें ये बताओ, क्योंकि हम इसके लिए सब कुछ त्याग कर रहे हैं। दुकान 6 महीना बंद रहेगी तो 2 साल तक जमेंगी नहीं, सब ग्राहक टूट जाएंगे। 6 महीना नौकरी पे नहीं गए तो 6 महीना वो काम कोई ना कोई करेगा ना, तो हमारी नौकरी छूट जाएगी, कोई दूसरा आदमी आके वहां जम जाएगा। तुमने तो कह दी के भाई करो वो हुई है प्राप्ति। वो कहते भैया मेरी तरफ से गारंटी नहीं है, गारंटी वस्तु के स्वरूप की तरफ से है, क्योंकि स्वरूप यों ही जानू रे। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि अंदर में तेरा भगवान आत्मा विराजमान है, और तू उधर को देखेगा और तेरी ज्ञान की ताकत में उसे देखने की ताकत है, और तू पूरा सारी तरफ से उपयोग हटाकर देखेगा तो क्यों नहीं देखेगा। वो दिखने का नाम तो प्राप्ति होना है, और क्या है, कोई खरीदना थोड़ी है कि तेरे साथ आ जाए, साथ फिरे, तेरे साथ पाड़े, कोई ऐसी तो कुछ है नहीं। सिर्फ तुझे उसे देखना है और तुझे अपने चित्त में ये निर्णय करना है कि ये मैं हूं, बस खत्म, होगी प्राप्ति। इसके अलावा और क्या प्राप्ति होनी है। रोजन अपने घर में नहीं देखते हैं, हमें पक्का भरोसा है कि मैं अभी घड़ी खोल के रख के आया हूं तो अपने सिरहाने एक पर्टिकुलर जगह पर रख के आया हूं, और रोजाना भी मैं उतार के रखता हूं तो वहीं रखता हूं। क्यों? अब मैं कहूं तो भैया जगह दिन जाना जरा मेरी घड़ी उठा लेना, मेरे सिरहाने है ना बंदवालवारी है ना उधर रखी होगी, ठीक है मैं जाता तो हूं, और नहीं मिली तो। अरे जा तो एक दफे, ठीक है मैं कह रहा हूं ना, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूं ना, लेकिन आप बताओगे नहीं मिली तो। यदि कोई इस तरह से अड़ जाए तो आप क्या कहते, कि हिलता तो है नहीं, जाता तो है नहीं, तुझे नहीं मिले तो फिर कहना। हम यही से कहते हैं लोक में कि नहीं मिले तो कहना, कि फिर क्या करूंगा, तो मैं तो चक्कर काट गया हूं, तो मैं नहीं मिले तो आप तो कह दोगे नहीं मिली तो उधर देख ले। कहते हैं लोक में तो झंझला कर कहते हैं हम, कि अरे भाई वहीं रख के आया हूं, वहीं रोजाना रखता हूं, अब भी रख के आया हूं तो क्यों नहीं मिलेगी। देखो हमें कितना कॉन्फिडेंस होता है, मैं बता रहा हूं आपको, जबकि उसमें 50 चक्कर हो सकते हैं, हम खुद ही भूल गए हों, हमारे हाथ में से वो टूट गया हो कुछ उसका हिस्सा, और वो कहीं निकल गई हो, और हमने जो कल रखी थी वो हमारी स्मृति में मैं रख के आया हूं ऐसा याद रह गया हो, ये सब हो सकती है क्या? नहीं, ये भी हो सकती है कि मैं वहां रख के आया हूं और कोई दूसरा आदमी आया तो वहां से उठा के ले गया हो, कितनी कितनी बातें हो सकती हैं, हो सकती है ना। फिर भी उस आदमी को कितना कॉन्फिडेंस रहता है, फिर भी वो कहता है कि नहीं तू जाके देख वहां क्यों नहीं मिलेगी, वहीं रखी जाएगी, वहीं रखी, मैं कहता हूं ना रखिए, मैं कहता हूं ना रखिए। वे कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप है, ये मेरी तरफ से नहीं है। कैसा तू अग्नि पे हाथ रखना तो हाथ जल जाएगा कि नहीं जला तो, नहीं जला तो क्या तू स्टोव जलाना, जो भी जल क्या है, गैस चूल्हा जलाना और उसके ऊपर चाय रखना, 10 मिनट में चाय बन जाएगी, और नहीं बनी तो क्या करे बोले। ये माताएं बहनें रोजीना बहस करें कि वो कहे रोटी इस तरह सिक जाती है, वो भाड़ा सिखाने वाली बताए चाय इस तरह बन जाती है, क्यों तो दो सीटी कुकर की दो सीटी आ जाए तो समझ लेना चावल पक गए, 3 सीटी आ जाए तो समझ लेना दाल भी पक गई, और नहीं पकी तो क्या करे बोले। क्या होता है इस जगत में, आप भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं ना कि हम सारी जिंदगी से कर रहे हैं और रोजाना पक जाता है, और तेरे भाग से नहीं पके तो हम क्या करें। कि आप गारंटी लो तो मैं करने को तैयार हूं, कि काहे की गारंटी। अरे गारंटी तो इस बात की है कि इतना गर्म पानी हो उसमें वो उबले तो पके ही पके, क्यों? ऐसे वो कहते हैं कि भगवान आत्मा अंदर विराजमान है। अब वहां तो नहीं होता था कोई चोरी करके ले गया हो, वहां तो नहीं होता था कि हम उसे कहीं भूल आए हों, ये सारी संभावनाएं नहीं है ना। वो यहां हमेशा मौजूद है, कहां मौजूद है? तालाब में, तालाब में एक कमल है, और कमल बच्चू ही है। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, कौन से कितना नए आ गए, एक वो अनुप चाहता सदगुरु भगवान ने आ गया तेरा घट है, और तू ही वो कमल है उसमें है, भगवान आत्मा अंदर है ना, ये तो पक्की बात है ना। क्यों महावीर जी अपने शरीर के भीतर ही आत्मा की असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण है ना, इसमें कोई शंका है क्या? इतने दिनों तक अपन ने शास्त्र पढ़े और सब किया, तो मैं आपसे पूछता हूं छाती पे हाथ रख के कि इसमें एक सेकंड भी आपके चित्त में ये शंका हुई कभी कि इसमें आज शरीर में अभी आत्मा नहीं हुआ तो? किसी को नहीं हुई ना, यानी कितना पक्का भरोसा है। अब जब वो यहां है और जानने पर दिखाई दे जाता है कि इसका क्या प्रमाण है कि अनंत जीवों को आज तक दिखाई दे गया, नहीं तो वे मोक्ष कैसे जाते हैं? अभी इतने प्रमाण हैं, उनने देखा और उन्हें यहां भगवान आत्मा दिखाई दे गया। अब तू देख, कब मैंने देख लिया? 10 मिनट हो गया मुझे देखते देखते, मुझे वो दिखाई दिया नहीं। तो हमने तो तेरे से 6 महीना देखने की बात करी थी, और तू 10 मिनट में आ गया हमारे पास, हमें नहीं दिखाई देता, हमें नहीं दिखाई देता है? क्यों? हमने तो ये कहा था कि 1-6 महीना कहनो मेरो मान ले, और संकल्प और विकल्प के विकार तज अपनो मन एक ठोर आन ले, हमने तो ये कहा था। अब तू और संकल्प विकल्प में लग गया होगा, तो अब तू ये भी छोड़ रहा है कि नहीं मिला तो, नहीं मिला तो क्यों? तुमने कह दी कि नहीं मिलेगा तो कैसा होता है ना। देखो पहले के जमाने में राजा मर गया और उसने किसी को राज तिलक नहीं किया, उसके बच्चे 6 नहीं, संतान कोई 6 नहीं, तो ऐसा करते थे नगर के लोग कि राजा का जो हाथी होता था ना उसको छोड़ते थे, और वो जिसको बैठा के लाता था तो उसे राजा बना देते थे। तो वो हाथी को छोड़ा गया, तो हाथी गया तो एक भिखारी को उसने सूंड से उठाया और अपने ऊपर बैठाया
और लेके आया,
नहीं 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 गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ हम नहीं मान, इसको इसको बनाएंगे राजा, इसको भगाओ, बहुत दूर भगा दो, कहीं जाता हाथी पहुंचे ही नहीं पाए, और द्वारा हाथी छोड़ो। तो द्वारा हाथी छोड़ा तो वो खोजते खोजते जहां वो भिखारी मिला ना, उसको फिर द्वारा बैठा के लाया। अब क्या करे, और दूर ले जाओ इसे जंगल में। तो और दूर ले गए, तो तीसरी दफे गया तो खोजते खोजते हाथी उसी भिखारी को बैठा के जाए। अब तो पक्का बन गया ना राजा, अब राजा बन गया। उसको कहा कि भाई राजा बन गया क्या होता है, राजा कैसे बनते हैं राजा, कुछ नहीं कि तुम ये अपने कपड़े लत्ते उतारो और बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े लत्ते रखे हैं, नहाओ धो अच्छी तरीके से, और ये कपड़े पहनो गहने पहनो, राज सिंहासन पर तुम्हें बैठाया जाएगा, तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, ये सब उसको बताया और तुम्हारा सब व्यवस्था होगी। कि ठीक है ऐसा होगा, ठीक है। तो उसने सारे कपड़े उतारे अपने, वो गंदे गंदे, और उनको संभाल के एक पोटली बांधी और वो पोटली बांध करके उसे लेकर के आंख में दाब के बोले चलो कि इनका क्या करेगा, हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाएंगे, राज सिंहासन पर बैठाएंगे, तेरी सारी व्यवस्था होगी, नौकर चाकर लगे होंगे, तू इस पोटली को क्यों रखता है। तो वो कहता है भैया यदि तुमने नहीं बैठाया तो दो दफे हाथी बैठा के लाया था और तुम पकड़ के हमें वहां छोड़ आए थे, क्यों तीसरी दफे भी तुम्हारे मन में ऐसे ही आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा क्या पहनूंगा, क्यों वो जब तक पक्का भरोसा नहीं हो जाए अपनी पोटली को संभाल के रखता है, न मालूम किस दिन जरूरत पड़ जाए। ये कोई कहानी नहीं है, मैंने शायद एक दिन सुनाया था कि जब हम अपना गांव छोड़ करके और वहां से आए तो हमने कहा पिताजी से कि इस मकान को अपन बेच देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मकान नहीं है, मकान नहीं दे, क्यों क्या कह रही है, मकान अभी अपन तो जा रहे हैं, अब यहां आएंगे नहीं तो अपन जहां जा रहे हैं जब नक्की हुआ था तो वहीं पर अपन मकान लेंगे रहेंगे, जो कुछ भी करेंगे धंधा पानी वहीं करेंगे, अब क्या करेंगे। नहीं नहीं, नहीं। क्यों, वहां धंधा नहीं जमा तो लौट के आना पड़ा तो मैंने कहा लौट के आएंगे तो इसी गांव में आएंगे, जो आज तक जिस गांव में ना उस वक्त स्कूल नहीं था, पुलिस चौकी नहीं थी, रोड नहीं था, बस नहीं जाती थी, ट्रेन नहीं जाती थी, कोई सवारी नहीं मिलती थी, कुछ नहीं था, और आज भी लगभग वैसा ही का वैसा है। प्राइमरी स्कूल हुआ हो तो हुआ हो, ना डाकखाना ना पुलिस चौकी कुछ नहीं था। मैंने कहा आएंगे तो इसी गांव में आएंगे, हिंदुस्तान में 7.5 लाख गांव हैं तो वहां नहीं कहीं ना कहीं नहीं बस पाएंगे। ये नहीं भैया, नहीं भैया वे कहते रहे और हमने तो बेच दिया कभी इस गांव में दोबारा लौट के नहीं आना। ऐसा ही होता है भाई साहब, अकेले वो तो कहानी है भिखारी की, तो सब छोटे बड़े भिखारी ऐसे ही हैं। देखो ये नौकरी है तुम्हारी यहाँ और तुझसे 10 गुनी अच्छी नौकरी मिलती है ना, तो अभी 6 महीने तक इस्तीफा नहीं देते हैं क्या, वहां जाके जम जाए, अच्छी हो जाए, पानी मानी लग जाए हैं, तो फिर छोड़ेंगे हैं, करते कि नहीं करते हैं। वो तो पुरानी चीज छोड़ने का भाव नहीं होता तो नई चीज हाथ आती नहीं है, क्योंकि चित्त विभक्त रहता है ना, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं ना, यहाँ के वहां के यहाँ के वहां के यहाँ के वहां के, तो मन लगा के वहां जहां गया है वो तो काम भी नहीं कर सकता। असली पुरुषार्थी जीव कौन है कि जिस सीढ़ी पर से चढ़ के गया उसे तोड़ दे, क्यों क्या मुझे उतरना ही नहीं है, अब मैं तो और आगे चढ़ूंगा, इस सीढ़ी को रखूं क्यों। आप जानते हैं युद्ध के मैदान में क्या होता है, जो अपनी सेना जाती है ना लड़ने वाले सबसे आगे मालूम कौन रहते हैं? नहीं मालूम, इंजीनियर। वे सड़क बनाते जाते हैं, ये रास्ता बनाते जाते हैं, समझे ना, और वो आगे उसके पीछे सेना उसके ऊपर आती है। आगे वे पुल बनाते हैं टेम्परेरी, और उसमें से नदी पार करती है सेना, और डॉक्टर भी साथ साथ चलते हैं सब। क्यों? कि वो कोई घायल हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, तो मलम पट्टी कौन करेगा, दवाई कौन देगा? दवाई का बक्सा लाद करके डॉक्टर साथ साथ चलते हैं, पर इंजीनियर आगे आगे चलते हैं। और अब यदि अपन को लौटना पड़ा, वहां से प्रेशर ज्यादा पड़ा, अब आगे बढ़ते हैं तो मारे जाएंगे, तो इंजीनियर सबसे पीछे रहते हैं। जब यहां मरने को आगे और वहां पीछे, कि हम सेना निकलती जाए और तुम सड़क और पुल तोड़ते जाओ। अरे हमने बनाए हैं अभी और तोड़ते जाए, कि हाँ, क्योंकि हमारा पीछा जो सेना करेगी हमें मारने को, उनको बनी बनाई सड़क मिल जाएगी और बने बनाए पुल मिल जाएंगे, तो हमें मार डालेगी। तुम तोड़ दो, कम से कम उन्हें बढ़ने के लिए फिर अपनी नई सड़क तो बनानी पड़े, नया पुल तो बनाना पड़े। कितने में तो अपन न मालूम कहां के कहां पहुंच जाएंगे। जाते वक्त आगे और लौटते वक्त पीछे, आगे भी गोलियां खाने को और लौटते वक्त भी पीछे रहकर गोलियां खाने को। माने जिस सड़क को हमने बनाया है, अब वो सड़क हमें तोड़ देना, हमको पीछे नहीं हटना। तो कहते तेरा भगवान आत्मा है, तू उधर जाना, तुझे अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है ठीक है, जाता हूं, लेकिन जरा बाल बच्चों को तुम संभाल के रखना, घर को ठीक रखना। पड़ोसी को समझा समझा के जाता, भैया तुम ध्यान रखना मेरे घर का। क्यों? अरे अब लौट के इधर आना है क्या? तुझे वो मिल जाएगा, और नहीं मिला तो कहते देखो प्राप्ति ना हुई है कछु, ऐसो तू विचार तू है, सही हुई है प्राप्ति स्वरूप यूं ही जान ले। गारंटी है किसकी तरफ से? वस्तु के स्वरूप की तरफ से गारंटी है। अंदर भगवान आत्मा विराजमान है, ये परम सत्य है, तेरी ज्ञान की पर्याय में ये ताकत है कि उसको जान सकता है, ये परम सत्य है। श्रद्धा की पर्याय में ये ताकत है कि उसमें अपनापन स्थापित कर ले, ये परम सत्य है। अब तू काय के संकल्प विकल्प में पड़ा है, अब जाता क्यों नहीं है? देखो बनारसीदास ने तो लिखा है, और जयचंद जी छाबड़ा थोड़ा और आपको आश्वासन देते हैं, आगे पढ़ो, कि 6 महीना तो बहुत लंबा कोर्स होता है। क्यों? 6 महीना में आत्मा का अनुभव होगा, इतना हमारे बस की नहीं है, इतना हम नहीं दे सकते हैं। कि तूने 30 वर्ष की रोटियों के लिए 30 वर्ष दिए हैं बेटे। कोई डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, समझे ना, तो उसे 30 वर्ष लगते हैं। पहले डॉक्टर बने, पढ़े, कौन सी क्लास पास हो गए, फिर उसमें भर्ती हो गए, फिर 5 साल पढ़े, फिर एमडी करे, फिर वो क्या कहते हैं, क्या करना पड़ता है, हाउस है ना, वो करनी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रात रात भर की ड्यूटी देनी पड़ती है, फिर 3 साल, फिर वे कहते हैं कि 3 साल तुम गांव में जाके पहले करो, फिर तुम्हें हम शहर में आने देंगे। मानो जो लड़कियां डॉक्टर थी, उनने अदालत में जाकर के ये कहा कि ऐसे हम जाकर के पढ़ पढ़ा के तैयार होंगे तो ये 25, 27, 28 वर्ष की हो जाएंगी, फिर 3 साल जाके गांव में रहेंगी। हम ऐसा शादी कौन करेगा, फिर हम शादी कब करेंगे, ये नहीं हो सकता। ऐसा गवर्नमेंट से कहा, 60 साल की जिंदगी के लिए 30 साल की पढ़ाई, और यहां अनंत काल तक के अनंत सुख के लिए 6 छह महीना का बता रहे हैं तो इसमें कहते बहुत होते हैं, छह महीना तो बहुत होते हैं। क्यों? फिर भी जयचंद जी छावड़ा आपको डांटते नहीं है, शांति जी जैसा पुचकार के कहते हैं सुनो निकालो पेज नंबर 346 पे, यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, यदि पर वस्तु हो तो उसकी प्राप्ति नहीं हो। अब वो तो अपना आत्मा है, क्यों नहीं मिलेगी? पर वस्तु तो है नहीं, पर वस्तु हो तो उसकी प्राप्ति नहीं हो। देखो अपना स्वरूप तो विद्यमान है ना, किंतु उसे भूल रहा है। यदि सावधान होकर देखे तो अपने निकट ही है, पर तो तेरे देखने की देर है, वो तो है ही यहां। उसे मिलने और नहीं मिलने का क्या सवाल है, वो तो मिला ही मिला है। यहां छह मास के अभ्यास की बात कही है। इसका अर्थ यह नहीं समझना कि इतना ही समय लगेगा, घबराओ मत, जमीन नहीं लगने वाले हैं। क्या उसकी प्राप्ति तो अंतर्मुहूर्त मार्ग में ही हो सकती है, है? देखा देखो ना पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, वो भी लिखा। परंतु यदि शिष्य को बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया, इसलिए छह महीना कह दिया। तो ये बहुत ही कठिन लग रहा होगा, नहीं मिलेगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो हमने छह महीने की बात कही है। यदि समझने में अधिक काल लगे तो छह मास से अधिक नहीं लगेगा, इसलिए यहां उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमें लग जाने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उपदेश है। देखो अब ये कोलाहल मैंने क्या क्या आ गया, क्या क्या आ गया, देखो अपने आत्मा की में उपयोग को लगाना, इसके अलावा आत्मा के कल्याण के लिए जो जो लोग करते हैं आज तक आपने किया है अथवा और धर्म के नाम पर लोग करते हैं, उन सब का नाम कोलाहल है। समझ लो आप, अव्यत शील संयम व्रत तप उपवास ये सब आ गए, समझे? ये आ गए। अभ्यास शब्द का अर्थ स्वामी जी इस प्रकार कहते हैं, अब अभ्यास करने क्या करें, अभ्यास करना क्या करें, अब क्या करें, जैसे प्रैक्टिस करो, आंखें बंद करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अरे वस्तु स्वरूप का विचार, उसका निर्णय बस यही अभ्यास है, और कोई अभ्यास इसके अलावा करना नहीं है। इसमें सब लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूं। स्वामी जी का ज्यादा लंबा नहीं है, पढ़ सकते हैं अपन। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करे और प्राप्ति ना हो, ऐसा तीन काल में भी नहीं हो सकता। यहां अभ्यास का अर्थ अकेला शास्त्रों को पढ़ना और सुनना मात्र नहीं है, किंतु अभ्यास अर्थात निःशुद्ध चैतन्य में एकाग्रता करने के पुरुषार्थ की बात है। भाई तू अपनी श्रद्धा में तो ले की वस्तु ऐसी है, श्रद्धा में दूसरा कुछ लेगा तो आत्मा हाथ नहीं लगेगा, पुरुषार्थ अंदर की ओर नहीं ढलेगा। अब तुझे कहें ऐसा नहीं हो तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे। देखो आपको गोल्ड मेडलिस्ट होना है, के पास होना है, बड़े से बड़ा उद्देश्य गोल्ड मेडलिस्ट होना, और छोटे से छोटा उद्देश्य पास होना। तो उसके सबसे बढ़िया और एकमात्र उपाय क्या है, अध्ययन करना है ना। अब कोई आदमी कहे कि नहीं एक नहीं बहुत है, अध्ययन करना तो है ही, फिर परीक्षा में नकल मारना भी है, आजकल बहुत चलती है आपको पता नहीं है, तो उसमें भी पार नहीं पड़े तो कॉपियां कहां गई हैं उसका पता लगाकर कॉपी जांचने वाले के पास पहुंचना, तो वहां भी तुम्हें सफलता नहीं मिले तो वो रिजल्ट जहां पहुंचा देगा तो वो जो रिजल्ट चढ़ाते हैं ना हमारे सीटों पर उसे ट्रेबुलेशन बोलते हैं दादा क्या, हमने तो बहुत किया। तो उस ट्रेबुलेशन के वाले के पास जाना, तो उसके बाद चेकिंग वाला होता है, वो चेक करता है इन्होंने सही ट्रेबुलेशन किया, उसके पास जाना, उसके पास से भी निकल जाए तो वो क्लर्क है ना, अरे वो तो एक बिंदी बढ़ा देता है। बहुत उपाय है, पेपर आउट करना, इतने उपाय जिसको दिखता है वो गारंटी से पास होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका चित्त बटा हुआ है और जिसे एक एकमात्र उपाय पढ़ना है वो उसमें चित्त बटा नहीं है तो वो पढ़ेगा और वो निश्चित रूप से पास है। आप समझे ना, कि तो चित्त बट जाता है उसका। एक हमारे साथी निरीक्षक थे अध्यापक, तो वो क्या करते थे, क्योंकि आजकल विद्यार्थियों को पकड़ लेना, उनकी कॉपी पे नोट लगा देना तो खतरा बोल लेना है, बीमार पीट विद्या वालों क्या क्या करेंगे, तो वो कुछ नहीं करते थे, वो शांति से घूमते रहते थे और वहां जाके खड़े हो जाते थे। जब वो खड़े हो जाते थे ना तो फिर वो नकल करना तो बंद कर ही देगा ना, और उसको दाब के रख लेगा पर्ची को, फिर बैठा जाएगा, फिर चले जाते, फिर वो पर्ची मर्ची निकाल के लिखना शुरू करता, थोड़ा बहुत यहां घूम घाम के कड़ा के वहीं खड़े हो जाते, उधर को देखते। ऐसा नहीं कि वो वहां आगे खड़े हुए जानबूझ के, नहीं ऐसा नहीं पल लगे उसे कि यहां आगे खड़े हैं, उधर समझते अब घूम रहे तो कहीं ना कहीं खड़े होने ही है तो हो गए। वो ऐसा करते हैं, नहीं कि ऐसा क्यों करते हो तुम, बोले साले का आधा घंटा खराब हो जाएगा, एक घंटा तो अपने आप ही नहीं लिख पाएगा, अपने आप ही फेल हो जाएगा, यही झगड़ा में कौन पड़े, क्यों तुम तो नहीं करते गजेंद्र सा क्या करें, कैसे निपटे इनसे, यानी हजार उपाय दिखते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक उपाय है क्या, अध्ययन अध्ययन और अध्ययन, ऐसे ही एक उपाय है अपने भगवान आत्मा के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और उसी का अध्ययन मनन चिंतन जो भी समझ लो, अभी मैं सब लिखा है मैंने इसमें, इसलिए मैं अभी समय तो हो गया, तुम पढ़ लोगे घर पे कि मैं पढ़ के सुनाऊं, इसमें ये सब लिखा है कि छह महीना तक तो कोई आत्मा में रहेगा नहीं, तू छह महीना तो आत्मा में रह नहीं सकता है, अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है, क्यों अंतर मुहूर्त कितने हो जाए 48 मिनट से कम, तो छह महीना में कितने 48 मिनट होंगे, क्यों तो इतने केवल ज्ञान हो जाएंगे। तो छह महीना में अभ्यास करने की बात क्या है, तो उसमें अध्ययन मनन चिंतन सत्समागम ये सब आ गया। वो कहते हैं हम तुमको देशना लब्धि की बात से मना नहीं कर रहे, प्रायोग लब्धि की बात से मना नहीं कर रहे, अध्ययन मनन चिंतन से मना नहीं कर रहे, छह महीना तो यही करोगे, पर तो दुनियादारी की बातों से निषेध कर रहे हैं। छह महीना की जब अंतर्मुहूर्त की बात कहें और केवल ज्ञान की बात कहें तो फिर सबका निषेध हो जाएगा, लेकिन अब छह महीने की बात कहते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि जहां जो संभव हो वो ही होगा। देखो तो अंतिम पैरा पढ़ो, सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों का निषेध और वह भी छह महीने तक, यह सब कैसे संभव है, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि संकल्प विकल्पों को पूर्णता अभाव करके यदि अंतर्मुहूर्त तक भी हो जावे तो केवल ज्ञान हो जाता है, और यहाँ छह महीने तक करने की बात कह रहे हैं, इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में वाद विवादों में उलझने का निषेध है, विकल्पात्मक तत्व मंथन का नहीं, अति आवश्यक तत्व चर्चा का नहीं। मैं आप इसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो लोग कर रहे हो वो 90% तो सही रास्ता है, यदि आप और अपने चित्त को नहीं भटका रहे हो, यदि छह महीना तक की बात है तो यही होगा। एक उद्देश्य से ख्याल में आई ना, अब ये कहेंगे कौन सी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें करूंगा इसके बाद में बीएड कर लूंगा इसके बाद ये कर लूंगा, अभी बहुत है 5 साल है, 5 साल बाद में निर्णय करते रहना जो भी करना है, है ना, अभी तो कम से कम पूरी तरीके से एक चित्त होकर एक चीज, एक छोटे छोटे उद्देश्य बनाओ ना कि आज हमको बारहवीं गाथा का अर्थ पूरी तरह समझना है, बस खत्म। आज का हमारे 24 घंटे का ये है, आज हमें ग्यारहवीं गाथा समझनी है, आज 13वीं समझ, छोटे छोटे उद्देश्य बनाओ ना। फिर दुनिया में फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, कल्पना लोक में अभी से उड़ने की क्या जरूरत है। और वो तो सुबह आ ही गया था कि केवल ज्ञान में नोंद है, एक समय पहले कुछ होने वाला नहीं है, एक समय बाद कुछ लगने वाला नहीं है, वो तेरे व्यर्थ के इन संकल्प के जालों से वहां कुछ होने वाला नहीं है, तो वहां की से हटाने के लिए तो एक गारंटी है, समझ गया ना। और यहां लगाने के लिए तेरी रुचि की बात कर रहे हैं कि मैं कौन होता हूं साहब वहां से हटा के लगाने वाला। हम कहां कह रहे कि तू हटा के लगा, हम तो कह रहे तेरी रुचि एकमात्र एक करने में हो तो तेरे गारंटी से सफलता मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी, उसमें किसी प्रकार की तू शंका मत कर।